Thank you, choir. What a blessing you are for us and for all who listen and hear you.
धन्यवाद देते हैं गायक मंडली के लिए. अपने जीवन में मुझे बहुत से ऐसे लोगों को मिलने का मौका मिला है जिनके दुख लगता है उनकी आत्मा की गहराइयों में समा गए हैं. इन क्षणों मैंने अपने प्रिय भाइयों और बहनों को सुना और उनके साथ अपने कष्टों में दुखी हुआ हूं. मैंने मनन किया है कि उनसे क्या कहूं और मुझे ये समझने में कठिनाई होती है कि कैसे उन्हें उनकी परीक्षाओं में दिलासा और सहारा दूं. अक्सर उनके दुख का कारण ऐसा होता है जिसे वे अंत समझ लेते हैं. कुछ प्रिय संबंध के अंत का सामना कर रहे हैं, जैसे किसी प्रिय की मृत्यु या परिवार के किसी सदस्य से मन मुटाव. दूसरे महसूस करते हैं कि उनकी आशा समाप्त हो रही है. विवाहित होने की आशा या बच्चे होने की आशा या रोग से मुक्ति पाने की आशा. हो सकता है अन्य अपने विश्वास के अंत का सामना कर रहे हैं जब वे संसार में भ्रामक और विरोधी बातें उनके विश्वास पर संदेह करने, यहाँ तक कि इसका त्याग करने पर मजबूर करती हैं, जिसे वे कभी सच समझते हैं. कभी न कभी मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी को ऐसा अनुभव होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है. हम अकेला, असंतुष्ट और भटका हुआ महसूस करते हैं. प्रत्येक की परिस्थिति अलग है और प्रत्येक जीवन की बातें विशेष हैं. फिर भी मैंने सीखा है कि कुछ है जो उस कड़वाहट को दूर कर सकता है जो हमारे जीवन को में आ सकती है. एक काम है जो हम जीवन में अधिक मधुर, अधिक आनंददायक और सुखमय बनाने के लिए कर सकते हैं. हम कृतज्ञ हो सकते हैं. उस व्यक्ति से परमेश्वर का धन्यवाद करने को कहना जो दुखों से बोझ से दबा है, ये संसार की समझ के विपरीत हो सकता है. लेकिन जो कड़वाहट भावनाओं का परित्याग कर कृतज्ञता और मिठास को अपनाते हैं, वे चंगाई, शांति और समझ को अनुभव कर सकते हैं. यीशु मसीह के शिष्य के रूप में हमें हर अवस्था में हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करने, प्रभु के लिए कृतज्ञता के गीत गाने और हमारे हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरे होने की आज्ञा दी गई है. परमेश्वर हमें कृतज्ञ होने की आज्ञा क्यों देता है? उसकी सभी आज्ञाएं हमें आशीषें उपलब्ध कराती हैं. आज्ञाएं हमारी स्वतंत्रता उपयोग करने और आशीषें पाने का मौका है. पिता जानता है कि कृतज्ञता की आत्मा का विश्वास करने से हमें सच्चा आनंद और भरपूर खुशी मिलेगी. लेकिन कुछ पूछ सकते हैं, मुझे किस वस्तु के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जबकि मैं अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं? हम किस बात के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं? इस पर ध्यान केंद्रित करना शायद एक गलत दृष्टिकोण है. कृतज्ञता की आत्मा का विकास करना कठिन होता है यदि हमारा कृतज्ञता का स्तर इस पर निर्भर करता है कि हमें कितनी आशीषें मिली हैं. अक्सर हमें मिली आशीषों को गिनना महत्वपूर्ण है और यदि कोई अपनी आशीषों को गिने तो जानेगा कि उसके बहुत सी आशीषें मिली हैं. लेकिन मैं विश्वास नहीं करता कि प्रभु हमसे यह आशा करता है कि हम कठिनाइयों के दौरान उसको कम धन्यवाद दें और जब हमारे पास बहुतायत से हो और हमारा जीवन आराम से हो रहा हो, हम उसको अधिक धन्यवाद दें. असल में अधिकतर धर्मशास्त्र संदर्भ वस्तुओं के लिए कृतज्ञ होने के लिए नहीं कहते, बल्कि कृतज्ञता की एक सामान्य अनुभूति या भाव रखने के लिए कहते हैं. उस समय कृतज्ञता प्रकट करना सरल होता है जब जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होता है. लेकिन उस समय क्या होता है जब कुछ भी हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता? मैं सुझाव देता हूं कि हम कृतज्ञता को इस एक स्वाभाविक प्रकृति समझें. जीवन को ऐसा रवैया जो हमारी वर्तमान परिस्थिति पर निर्भर ना करता हो। अन्य शब्दों में, मैं वस्तुओं के लिए कृतज्ञ होने के स्थान पर हमें अपनी परिस्थितियों के लिए, चाहे जैसी भी हो, कृतज्ञ होने पर केंद्रित होने का सुझाव देता हूँ। एक बैरे की एक पुरानी कहानी है जिसने ग्राहक से पूछा कि क्या उसे खाना पसंद आया था। ग्राहक ने उत्तर दिया, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन और अच्छा होता यदि बैरा उसे अधिक ब्रेड देता। अगले दिन जब वह आदमी फिर उसे खाने को गया, बैर ने ब्रेड को दुगना कर दिया। उसने दो स्लाइस के स्थान पर चार स्लाइस दे दिए, लेकिन वह आदमी फिर भी खुश नहीं हुआ। अगले दिन बैर ने ब्रेड को दुगना कर दिया, लेकिन वह आदमी फिर भी खुश नहीं हुआ। चौथे दिन बैरा उस आदमी को हर हालत में खुश करना चाहता था, इसलिए बैर ने 9 फुट का ब्रेड ली, उसे 2 टुकड़ों में काटा और मुस्कुराते हुए उस आदमी को परोस दी। बैरा ने उस आदमी की प्रतिक्रिया को जानने के लिए बेचैन था। भोजन करने के बाद वह आदमी खड़ा हुआ और बोला, हर दिन की तरह खाना बढ़िया था, लेकिन मैंने देखा कि तुमने फिर से ब्रेड के 2 स्लाइस देने शुरू कर दिए हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव हमारा है। आशीषें जो हमें नहीं मिली हैं, उनके आधार पर हम अपनी कृतज्ञता को सीमित कर सकते हैं, या हम नफी के समान बनना चुन सकते हैं जो अपनी हर परिस्थिति में हमेशा कृतज्ञ था। जब उसके भाइयों ने उस जहाज पर उसे बांध दिया जिसे उसने प्रतिज्ञा के प्रदेश में जाने के लिए बनाया था, उसके थकने और कलाइयां बुरी तरह से सूज गए थे और भयंकर तूफान ने उसे समुद्र की गहराइयों में डूबने के लिए भयभीत कर रहा था, फिर भी नफी ने कहा, मैंने अपने परमेश्वर की ओर नजरें उठाई और मैंने पूरे दिन उसकी प्रशंसा की, और मैं अपने कष्टों को ही कारण प्रभु के विरोध बड़बड़ाया नहीं। अय्यूब के समान बनना चुन सकते हैं जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी सब कुछ चला गया। फिर भी अय्यूब ने यह कहते हुए जवाब दिया, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हम मॉर्मन पथ प्रदर्शकों के समान बनना चुन सकते हैं जिन्होंने ग्रेट सॉल्ट लेक की और अपनी धीमी और कष्टपूर्ण यात्रा के दौरान गाते और नाचते और परमेश्वर की भलाई और महिमा करते हुए कृतज्ञता की आत्मा को बनाए रखा था। हम में से बहुत से यात्रा की कठिनाइयों में विमुख होते हैं, शिकायत करते हैं और परेशान हो जाते हैं। हम भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के समान बनना चुन सकते हैं जिसने लिबर्टी जेल में तकलीफ परिस्थिति में इन प्रेरणादायक शब्दों को लिखा था। प्रिय भाइयों, उन कार्यों को प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए जिसे करने में वह सक्षम है, और फिर उन्हें पूर्ण आश्वासन के साथ परमेश्वर के उद्धार को देखने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसे अपनी शक्ति प्रकट करने के लिए समय दो। हम कृतज्ञ होना चुन सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह की कृतज्ञता हर हालत में प्रकट की जा सकती है चाहे हमारे आसपास कुछ भी हो रहा हो। ये निराशा, निरुत्साह और हताशा को कम कर देता है। ये कठिन परिस्थितियों में उतना ही विकसित होता है जितना कि सुखद परिस्थितियों में। जब हम अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, हम क्लेश के बीच सुकून का अनुभव कर सकते हैं। कष्ट में हम अपने हृदयों को प्रशंसा में ऊपर उठा सकते हैं। पीड़ा में हम मसीह के प्रायश्चित की स्तुति कर सकते हैं। घोर दुख में हम दिव्य प्रभाव की दिलासा और शांति को अनुभव कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि समस्या का समाधान होने पर ही हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, लेकिन यह दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। यदि हम जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हैं और परमेश्वर का उन सब के लिए धन्यवाद नहीं देते जो हमारे पास पहले से ही है, हम जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। विपत्ति के समय कृतज्ञता प्रकट करने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी परिस्थितियों में खुश हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी विश्वास की आंखों के द्वारा अपनी वर्तमान चुनौतियों से आगे देखते हैं। यह होठों की कृतज्ञता नहीं बल्कि आत्मा की कृतज्ञता है। यह वह कृतज्ञता है जो हृदय को चंगा और मन को विस्तृत करती है। अपनी परिस्थितियों में कृतज्ञ होना परमेश्वर में विश्वास का एक कार्य है। इसमें यह प्रकट करने की जरूरत होती है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उन अनदेखी बातों पर आशा करते हैं जो सच हैं। कृतज्ञ होने के द्वारा हम अपने प्रिय उद्धारकर्ता के उदाहरण का अनुसरण करते हैं, जिसने कहा था, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। सच्ची कृतज्ञता आशा और गवाही की अभिव्यक्ति है। ये उस सच्चाई को स्वीकार करने से मिलती है कि हम जीवन की परीक्षाओं को हमेशा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भरोसा करते हैं कि एक दिन समझ पाएंगे। किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञता की हमारी समझ उन बहुत सी और पावन सच्चाइयों के विकसित होते हैं जो हम जानते हैं कि हमारे पिता ने अपने बच्चों के लिए सुख का महान योजना दी है, कि उसके पुत्र यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा हम अपने प्रियजनों के साथ हमेशा के लिए रह पाएंगे, कि अंत में हर रोग या अयोग्यता से मुक्त हमारे पास शानदार परिपूर्ण और अमर शरीर होंगे, और दुख और गम के हमारे आंसू अनंत खुशी और आनंद में बदल जाएंगे। पूरा नाप दबाकर और हिला हिला कर और उभरता हुआ हमारी गोद में डाला जाएगा। अवश्य ही इस प्रकार की गवाही ने उद्धारकर्ता के प्रेरितों को भयभीत संदेह करने वाले पुरुषों से स्वामी के भयरहित आनंदित संदेशवाहक बना दिया था। उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के पश्चात वे निराशा और दुख से भरे थे। जो हुआ था उसे वे समझ नहीं पाए थे, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। प्रभु उन्हें दिखाई दिया और घोषणा की, मेरे हाथों और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। जब प्रेरितों ने जी उठे मसीह को पहचाना, तब उन्होंने अपने उद्धारकर्ता के शानदार पुनरुत्थान को अनुभव किया था। वे बदल गए थे। कोई भी उन्हें उनके उद्देश्य को पूरा करने से रोक नहीं सकता था। उन्होंने साहस और दृढ़ता के साथ यातना, अपमान और मृत्यु तक को स्वीकार किया जो उन्हें उनकी गवाही के कारण दी गई थी। वे अपने प्रभु की प्रशंसा और सेवा करने से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने हर स्थान में लोगों के जीवन को बदल दिया था। उन्होंने संसार बदल दिया था। उसी परिवर्तन को महसूस करने के लिए आपको प्रेरितों के समान उद्धारकर्ता को देखने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा द्वारा दी गई मसीह की आपकी गवाही आपको नश्वरता की निराशजनक अंत से हटकर उस चमकदार भविष्य को देखने में मदद कर सकती है जिसे संसार के मुक्तिदाता ने तैयार किया है। अपनी नियति के संबंध में जो कुछ हमें मालूम है, उससे यह समझा जा सकता है कि जीवन में जिन दुखद अंत का हम अनुभव करते हैं वे हमें अस्वीकार्य लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कुछ है जो अंत का विरोध करता है। ये क्या है? क्योंकि हम अंतता के पदार्थ से बने हैं। हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे अनंत लोग हैं जिसका नाम अंतहीन है और जो अनंत आशीषों का वादा करता है। अंत हमारी नियति नहीं है। जितना अधिक हम यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में सीखते हैं, उतना ही अधिक हम महसूस करते हैं कि यहाँ नश्वरता में अंत सब कुछ का अंत नहीं है। ये केवल बाधाएं हैं, अस्थाई रुकावटें जो एक दिन उस अनंत आनंद के सामने बहुत छोटा प्रतीत होंगी जो विश्वासियों को दिया जाएगा। मैं अपने स्वर्गीय पिता को बहुत कृतज्ञ हूँ का बहुत कृतज्ञ हूँ कि उसकी योजना में कोई अंत नहीं है, हमेशा एक ऐसी शुरुआत है जिसका कोई अंत नहीं है। भाइयों और बहनों, हमारे पास कृतज्ञता से भरे होने का कारण है, चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमें किसी बड़े कारण की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास आनंदित होने के महान कारण है। हम बहुत आशीषित होते हैं यदि हम अपने बेहतरीन जीवन में परमेश्वर के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। स्वर्ग हमारे पिता के प्रति आभारी होने से हमारी समझ व्यापक और दृष्टि स्पष्ट होती है। ये विनम्रता और प्रेरित करती हैं और अपने साथियों और परमेश्वर की सभी रचना के प्रति हमारी सहानुभूति को बढ़ाती हैं। मसीह समान गुणों के लिए कृतज्ञता एक उत्प्रेरक के समान है। धन्यवाद से भर हृदय सभी गुणों का जनक है। प्रभु ने हमें उसका वादा दिया है कि जो सब कुछ धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं उन्हें महिमापूर्ण बनाया जाएगा और इस पृथ्वी की वस्तुएं उन्हें दी जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि हम प्रतिदिन धन्यवाद का जीवन जिएं, विशेषकर नश्वरता में कष्टों के दौरान। मैं आशा करता हूं कि हम अपनी आत्माओं को हमारे दयालु स्वर्गीय पिता की कृतज्ञता से भरने देंगे। मैं आशा करता हूं कि हम अपने वचनों और कामों के द्वारा निरंतर और स्थिरता से स्वर्ग में हमारे पिता और उसके प्रिय पुत्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। मैं यह प्रार्थना करता हूं और अपनी गवाही देता हूं और आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।